अरमान आज बेहद खुश था। ज़ोया का उससे गले लगना उसकी भावनाओं को और मजबूत कर गया था। दूसरी ओर अरहम बार बार अरहम और ज़ोया के गले लगने के बारे में सोच रहा था। उसे ज़ोया का किसी और को अपने सामने छूना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ सोचकर वो अपनी गाड़ी की चाबियां उठाकर चला गया। घर जाकर ज़ोया बोली, ओ नो, ये क्या हो गया मुझसे? क्या सोच रहे होंगे सर मेरे बारे में? क्यों मैं खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाई? उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने कुछ सोचते हुए अरमान को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ ज़ोया का नंबर देखकर अरमान मुस्कुराया और जल्दी से फ़ोन पिक किया। हेलो सर, ज़ोया बात करते वक्त हकला रही थी। फिर उसने हिम्मत जुटाकर अरमान से माफ़ी मांगी। सॉरी सर, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। ओह नो नो, इट्स ओके, प्लीज़ डोंट से सॉरी, समय ही ऐसा था, वो ओके, अरमान ने नरमी से जवाब दिया। थैंक यू सर, ऐसा कहकर ज़ोया ने फ़ोन काट दिया और उसने राहत की सांस ली। इतने में ज़ोया ने पलट कर देखा तो अरहम दरवाजे के पास खड़ा था और उसे देख रहा था। ज़ोया का अरहम को गले लगाना एक छोटी सी बात थी, लेकिन अरहम ने इस बात को अपनी आन का मुद्दा बना लिया था। उसकी होने वाली बीवी कैसे किसी और को छू सकती है, बस यही बात उसे खाए जा रही थी। इतने में ज़ोया ने अरहम से कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कब आए? आओ अंदर आओ। ज़ोया को ऐसा बोलते देख अरहम अंदर चला गया। जाते ही उसने पूछा, किससे बात कर रही थी तुम? अरहम का अचानक ऐसा पूछना ज़ोया को थोड़ा अजीब लगा, पर अगले ही पल ज़ोया ने उसे साफ साफ बता दिया, मैंने अरमान सर को कॉल किया था, आज जो भी कुछ हुआ बस उसी की माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया था। अरहम को फिर से गुस्सा आ गया। घर आने से पहले उसने थोड़ी ड्रिंक भी कर ली थी और वो नशे में सीधा ज़ोया के घर पहुंचा था। ज़ोया की बात सुनकर उसने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर ली। ज़ोया अरहम को इस हालत में देखकर चौंक गई। तभी उसे अलग तरह की गंध भी आ गई। अरहम, क्या हुआ तुम्हें? तुमने शराब पी है? हाउ डेयर यू, हाउ कुड यू डू दिस? ओ, अरहम गुस्से में था। और आज तुमने जो किया उसका क्या ज़ोया? सबके सामने अरमान को गले लगा लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को टच करने की? जवाब दो मुझे। उसने ज़ोया के कंधे जोर से पकड़ लिए थे। ज़ोया बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसे बेहद दर्द हो रहा था। वो अरहम को चिल्लाकर कह रही थी, अरहम प्लीज़ छोड़ो मुझे, और उसने अपने दोनों हाथों से अरहम के सीने को जोर से धक्का मारा। अरहम दूर जाकर गिर गया। ज़ोया का ये रिएक्शन वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वापस खड़ा होकर ज़ोया के पास आ गया। उसने ज़ोया के जबड़ों से पकड़ लिया और बेरहमी से अपने होंठ उसके होंठों से लगा दिए। वो बेरहमी से ज़ोया को किस कर रहा था। ज़ोया ने अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, पर उस वक्त वो उस मजबूत आदमी के हाथों मजबूर थी। करीब 15 मिनट बाद अरहम ने ज़ोया के होंठ छोड़े। अरहम ने उसके निचले होंठ पर काट भी लिया था, जिससे ज़ोया को खून आने लगा था। अरहम ने ज़ोया को चेतावनी देते हुए कहा, अगली बार किसी को छूने से पहले ये किस ज़रूर याद कर लेना। अरहम ज़ोया को बेरहमी से धक्का देकर चला गया। अरहम का ऐसा रूप ज़ोया ने पहले कभी नहीं देखा था। वो बेहद डर गई थी और वो पूरी रात अरहम के बर्ताव को देखकर रोती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ था। रोते रोते पता नहीं कब वो नींद के आगोश में चली गई। दूसरी ओर अरहम नशे में गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक सामने से दो काली मर्सिडीज आ गईं और एक तेज़ आवाज़ हुई। अरहम कुछ समझ नहीं पाया और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। उस काली कार से कुछ लोग निकले और अरहम को अपनी गाड़ी में ले गए। देखते ही देखते एक भयानक आग लगने के कारण अरहम की कार फट गई। एक ही रात में अरहम और ज़ोया की पूरी ज़िंदगी बिखर गई। अगली सुबह ज़ोया थोड़ी देर से उठी। उठते ही उसका सर दर्द से फट रहा था। उसके साथ कल जो हुआ था उसे बार बार याद आ रहा था। सब याद आने पर फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी गेट पर दस्तक सुनाई दी। ज़ोया को लगा कि फिर से अरहम है, तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, कौन? बाहर से रहीम बाबा की आवाज़ आई, बिटिया हम हैं, नाश्ता तैयार है, आप जल्दी नीचे आ जाओ। ओके, आप जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। ज़ोया ऐसा कहकर कुछ सोचकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाथरूम में शावर ऑन करके वो खड़ी हो गई और एक बार फिर अरहम की ज्यादती उसे याद आने लगी। वो काफ़ी देर बाथरूम में खड़ी होकर रोती रही। फिर उसने कपड़े बदले और खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें काफ़ी सूज गई थीं और उसके होंठ के पास नील पड़ चुका था। अगर ये निशान अम्मी ने देख लिया तो वो बेकार में परेशान हो जाएंगी। ये सोचकर उसने उन निशानों को छिपाने के लिए थोड़ा कंसीलर इस्तेमाल किया। ज्यादा नहीं, पर काफ़ी हद तक वे निशान फीके पड़ चुके थे। हल्का मेकअप करके ज़ोया जल्दी से नीचे आ गई और आते ही अपनी अम्मी के गले लग गई। एक दो आंसू उसकी पलकों में आ गए थे। उसकी अम्मी बोली, अरे क्या हुआ आज हमारी बिटिया को? परेशान नहीं हो बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में रहीम की आवाज़ आई, आ जाइए आप दोनों, नाश्ता कर लीजिए, फिर हमें शादी की तैयारियाँ भी करनी है। शादी का नाम सुनकर ज़ोया थोड़ी घबरा गई, पर कुछ बोली नहीं। और फिर हल्का फुल्का कुछ खाकर वो अपनी माँ से बाहर जाने की इजाज़त लेती है, जिस पर उसकी माँ साफ साफ मना कर देती है। बेटी, एक तो पहले ही हमारी वजह से आपको हल्दी भी नहीं लग पाई और अब कितना ही समय रह गया है शादी का, और इस वक्त आपका घर से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। धूल मिट्टी से आपकी रंगत भी सांवली हो जाएगी और आप दुल्हन हो बेटा, हम नहीं चाहते शादी के दिन आप कम सुंदर लगो। माँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे कुछ सामान भी खरीदना है। मैं अपनी ऑफिस की फ्रेंड शिखा को साथ लेकर जाऊँगी और जल्दी आ जाऊँगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें प्लीज़। ओके बेटा, अब आपसे हम जीत तो सकते नहीं, खैर आप जाओ और खैरियत से वापस आओ। ओके अम्मी, थैंक यू, यू आर सो स्वीट,
कहकर जोया अपनी अम्मी को गले लगाकर गाड़ी की चाबी लेकर निकल गई। उसने अरहम से मिलने का फैसला किया था। जो कुछ उसने उसके साथ किया था वो बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने डिसाइड किया था कि वो अब अरहम से शादी नहीं करेगी। जोया ने गाड़ी अरहम के घर की ओर दौड़ा दी। करीब 40-50 मिनट का सफर तय करके जोया अरहम के घर पहुंच चुकी थी। एक काली कार उसका कुछ देर से पीछा कर रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया।